国国际广播电台。
耶 ，China Radio International 嘿。
यह चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों, अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद साप्ताहिक कार्यक्रम बाल महिला स्पेशल और टी टाइम प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा पश्चिम की तीर्थ यात्रा। लीजिए सुनिए आज के मुख्य समाचार। च्योशी पत्रिका शी जिनपिंग का महत्वपूर्ण भाषण जारी करेगी। वांग यी 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में लेंगे हिस्सा और स्पेन व फ्रांस की यात्रा करेंगे। और विदेशी नेताओं ने ड्रैगन वर्ष की दी बधाई। अब आप अनिल पांडे से आज के पूरे समाचार सुनिए। 16 फरवरी को प्रकाशित होने वाली च्योशी पत्रिका चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव, राष्ट्रपति और चीनी सैन्य आयोग के अध्यक्ष शी जिनपिंग का महत्वपूर्ण भाषण जारी करेगी, जिसका शीर्षक है जनप्रतिनिधि सभा, व्यवस्था को बनाए रखें और सुधारें, लोगों को अपने देश के खुद के मालिक बनने की गारंटी दें। भाषण के मुताबिक चीन में जनप्रतिनिधि सभा व्यवस्था का कार्यान्वयन चीनी नागरिकों के लिए स्वामी बनने और अपने भाग्य को नियंत्रित करने के लिए एक अपरिहार्य विकल्प है। अभ्यास ने साबित किया है कि जनप्रतिनिधि सभा व्यवस्था एक अच्छी प्रणाली है जो चीन की राष्ट्रीय परिस्थितियों और वास्तविकता के अनुरूप है, एक समाजवादी देश की प्रकृति का प्रतीक है। यह सुनिश्चित करती है कि लोग देश के स्वामी हैं और चीनी राष्ट्र के महान कायाकल्प को सुनिश्चित करती है। उधर चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने 15 फरवरी को यह घोषणा की कि म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन के अध्यक्ष क्रिस्टोफ ह्यूजगेन, स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्बरेस, फ्रांस के राष्ट्रपति के विदेशी मामलों के सलाहकार के निमंत्रण पर चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की केंद्रीय पोलित ब्यूरो के सदस्य और विदेश मंत्री वांग यी 16 से 21 फरवरी तक 60वें म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस दौरान वे चीन विशेष कार्यक्रम में भाषण देंगे। सम्मेलन के प्रमुख मुद्दों के आधार पर प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चीन के रुख पर प्रकाश डालेंगे। साथ ही वे स्पेन और फ्रांस की यात्रा करेंगे। फ्रांस में चीन फ्रांस रणनीतिक वार्ता में हिस्सा लेंगे। चीनी प्रवक्ता ने 15 तारीख को संबंधित सवालों का जवाब दिया और कहा कि म्यूनिक सुरक्षा सम्मेलन महत्वपूर्ण वैश्विक प्रभाव वाली एक अंतर्राष्ट्रीय रणनीति और सुरक्षा नीति पर एक वार्षिक मंच है। चीन ने कई मौकों पर इसमें भाग लेने के लिए उच्च स्तरीय प्रतिनिधियों को भेजा है। वांग यी इस साल के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। मानव जाति के साझा भाग्य समुदाय के निर्माण और एक समान और व्यवस्थित विश्व बहुध्रुवीयता की वकालत पर चीन के रुख पर प्रकाश डालेंगे। चीनी प्रवक्ता ने कहा कि स्पेन यूरोपीय संघ का एक महत्वपूर्ण देश और चीन का सर्वांगीण रणनीतिक भागीदार है। लगभग 6 वर्षों के बाद यह चीनी विदेश मंत्री की एक बार फिर से स्पेन की यात्रा होगी। दोनों पक्ष इसे बहुत महत्व देते हैं। चीनी प्रवक्ता ने यह भी कहा कि चीन और फ्रांस दोनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य और प्रमुख स्वतंत्र देश हैं। इस साल चीन और फ्रांस के बीच राजनयिक संबंध स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है। विदेश मंत्री वांग यी की फ्रांस यात्रा इस साल चीन और फ्रांस के बीच पहली महत्वपूर्ण यात्रा होगी। उधर चीन में वसंत महोत्सव की छुट्टियाँ खत्म होने वाली हैं। कई लोगों ने काम पर लौटने की तैयारी शुरू कर दी है और वापसी यात्रियों का प्रवाह धीरे धीरे बढ़ रहा है। सड़क यात्रा इस वर्ष के वसंत महोत्सव यात्रा की पूर्ण मुख्य शक्ति बना है। 14 फरवरी से वापसी यात्री प्रवाह में काफी बढ़ोतरी देखी गई है। 17 फरवरी वसंत महोत्सव की छुट्टियों का आखिरी दिन है और वसंत महोत्सव के दौरान वापसी यात्राओं के लिए यह एक चरम अवधि होगी। चीनी उप परिवहन मंत्री ली यांग का अनुमान है कि एक्सप्रेस वे की चरम संख्या 6,52,00,000 वाहनों तक पहुँच जाएगी, जो कि वसंत महोत्सव यात्रा अवधि के दौरान सड़क नेटवर्क की औसत यातायात मात्रा का लगभग 1.75 गुना होगा। इस साल के वसंत महोत्सव के दौरान सड़क नेटवर्क की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि हम भीड़भाड़ वाले सड़क खंडों के डायवर्जन को मजबूत करेंगे, टोल स्टेशनों की यातायात क्षमता में सुधार करेंगे और बाधा निवारण व बचाव को अनुकूलित करेंगे। रेलवे के संदर्भ में यांगजी नदी डेल्टा क्षेत्र में रेलवे का वापसी यात्री प्रवाह लगातार बढ़ रहा है। यांगजी नदी रेलवे से 14 तारीख को 24,50,000 यात्रियों को ले जाने की उम्मीद है। उधर तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के आवास और शहरी ग्रामीण विकास विभाग के अनुसार 2024 में तिब्बत में 38 पुराने शहरी समुदायों के नवीनीकरण के लिए 684 लाख युआन का निवेश करने की योजना बनाई गई है, जिसमें 12,108 घर शामिल होंगे। साल 2024 में पुराने शहरी समुदायों के नवीनीकरण के लिए तिब्बत के वित्तीय सब्सिडी मानक को मूल 18,000 युआन प्रति घर से बढ़ाकर लगभग 30,000 युआन प्रति घर करने की योजना है। नवंबर 2023 में तिब्बत स्वायत्त प्रदेश के आवास और शहरी ग्रामीण विकास विभाग ने सभी स्तरों पर इकाइयों से 2024 में पुराने शहरी समुदायों के नवीनीकरण के लिए तकनीकी योजनाएं तैयार करने का आग्रह करना शुरू किया, ताकि पुराने समुदायों को वास्तविक स्थितियों के आधार पर सही मानकों के साथ बदला जा सके। उधर हाल ही में कई राष्ट्रीय नेताओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों ने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को फोन या संदेश भेजकर चीनी नागरिकों को ड्रैगन वर्ष की बधाई दी। लाओ पीपुल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी की केंद्रीय समिति के महासचिव और राष्ट्रपति ने चीनी नागरिकों के लिए शांति, समृद्धि, खुशी और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उम्मीद है कि पारंपरिक मित्रता की भावना से निर्देशित लाओस चीन व्यापक रणनीतिक सहकारी साझेदारी अच्छी बढ़ती रहेगी। उधर पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने चीनी नागरिकों को राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में उनकी अद्वितीय उपलब्धियों के लिए बधाई दी और चीनी लोगों को नव वर्ष में राष्ट्रीय समृद्धि के लिए एक नया अध्याय खोलने के लिए शुभकामनाएं दी। उधर नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने चीन के लिए दीर्घकालिक शांति, प्रगति और समृद्धि की कामना की। विश्वास है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के उत्कृष्ट नेतृत्व में नेपाल और चीन के बीच पहाड़ों और नदियों से जुड़े संबंध और विकसित होंगे और लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान एक उच्च स्तर पर पहुंचेगा। उधर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख ने ड्रैगन वर्ष में राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सभी चीनी लोगों के स्वास्थ्य, सफलता और समृद्धि की कामना की और उम्मीद जताई कि साल 2024 पेरिस ओलंपिक और पैरालंपिक में भाग लेने वाले सभी चीनी एथलीट पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। इसके अलावा क्यूबा, मंगोलिया, मालदीव, इसराइल, ईरान, दक्षिण अफ्रीका, नाउरू, ब्राजील, यूक्रेन, जर्मनी, पुर्तगाल और अन्य देशों के नेताओं ने भी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को नववर्ष की बधाई दी। उधर संयुक्त राष्ट्र स्थित चीन के स्थायी प्रतिनिधि चांगचुन ने 13 फरवरी को वैश्विक मानवीय सहायता कार्यों को मजबूत करने का आह्वान किया और कहा कि विकसित देशों को जरूरतमंद, विकासशील देशों को अधिक भोजन और वित्तीय आपातकालीन मानवीय सहायता प्रदान करनी चाहिए। उन्होंने सुरक्षा परिषद में जलवायु, भोजन और सुरक्षा पर उच्च स्तरीय खुली बहस के दौरान कहा कि वर्तमान में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कुछ देश गंभीर खाद्य संकट का सामना कर रहे हैं और उन्हें तत्काल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मदद की जरूरत है। मानवीय सहायता को दबाव के उपकरण के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए और इसमें कोई राजनीतिक शर्त नहीं जुड़नी चाहिए। चांगचुन ने कहा कि जलवायु परिवर्तन मानव अस्तित्व और विकास से जुड़ा है। अधिक से अधिक चरम मौसम की घटनाओं से खाद्य उत्पादन को खतरा हो रहा है, जिसका खामियाजा विकासशील देशों को भुगतना पड़ रहा है। चीन ने हमेशा विकासशील देशों को जलवायु लचीलापन बढ़ाने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद देने के लिए लक्षित कार्रवाई करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उधर संयुक्त राष्ट्र में चीन के स्थायी प्रतिनिधि ने 14 फरवरी को कहा कि चीन यमन मुद्दे पर राजनीतिक समाधान और मध्य पूर्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ लगातार प्रयास करने को जारी है। उन्होंने यमन मुद्दे पर सुरक्षा परिषद की सार्वजनिक बैठक के दौरान कहा कि पिछले कुछ समय से संबंधित पक्षों ने यमन मुद्दे के राजनीतिक समाधान पर घनिष्ठ संचार बनाए रखा है और यमन में राजनीतिक प्रक्रिया ने सकारात्मक प्रगति हासिल की है। उधर अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने 13 से 14 फरवरी तक फ्रांस की राजधानी पेरिस में 2024 मंत्री स्तरीय सम्मेलन और एजेंसी की स्थापना की 50वीं वर्षगांठ का आयोजन किया, जिसमें ऊर्जा सुरक्षा बनाए रखने, स्वच्छ ऊर्जा के परिवर्तन में तेजी लाने और ऊर्जा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को गहरा करने जैसे मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया। उधर यूक्रेनी मीडिया रिपोर्टों और आधिकारिक समाचारों के मुताबिक 15 फरवरी को 7 बजे तक यूक्रेन की राजधानी कीव और अन्य कई शहरों में विस्फोटों की आवाज सुनी गई। इसके साथ ही यूक्रेन रूसी मिसाइलों को रोकने के लिए काम में लगा है।